दिन भर 17 दिसंबर दिन रविवार सभी श्रोताओं को कुलदीप मिश्र का नमस्कार। पाकिस्तान में एक चर्च पर आत्मघाती हमला, कम से कम 8 की मौत।
तो जैसे मैं उसको छोड़ के पीछे हटाऊं तो इधर मेन गेट पर वहां पर फायरिंग शुरू हो गई। उन्होंने फिर एक सुसाइडर था उसको तो पुलिस वालों ने मार गिराया, दूसरा जो है वो चर्च के मेन दरवाजे तक पहुंच गया।
कल आएंगे गुजरात और हिमाचल चुनाव के बहुप्रतीक्षित नतीजे, सीधे अहमदाबाद से लेंगे हाल और बात करेंगे भविष्य में सोनिया गांधी की राजनीतिक भूमिका की।
आई थिंक शी इज वन ऑफ द ब्रेवेस्ट वुमेन आई नो।
एंड मैम वन लास्ट क्वेश्चन, विल यू बी कंटेस्टिंग फ्रॉम रायबरेली?
देयर इज नो क्वेश्चन, माय मदर विल कंटेस्ट फॉर दैट।
होंगी खेल की खबरें भी, लेकिन विश्व समाचारों के बाद।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा में मेथोडिस्ट चर्च पर हुए एक हमले में 8 लोगों की मौत हो गई है और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। दो बंदूकधारी चर्च के भीतर उस वक्त घुसाए जब चर्च में लोग प्रार्थना करने आए हुए थे। एक हमलावर को चर्च के दरवाजे पर ही मार दिया गया, जबकि एक अन्य ने इमारत के पास विस्फोट कर दिया। बताया जा रहा है कि दो और हमलावर मौके से भाग गए हैं। हमले की जिम्मेदारी कथित इस्लामी चरमपंथी समूह इस्लामिक स्टेट ने ली है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में करीब 80,000 लोगों ने अमेरिका के यरूशलेम को इसराइल की राजधानी के रूप में मान्यता देने के फैसले के विरोध में जुलूस निकाला। इंडोनेशिया में दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है। ये विरोध प्रदर्शन अमेरिकी दूतावास के करीब आयोजित किया गया था और इसमें देश के धार्मिक मामलों के मंत्री ने भी संबोधन दिया। विरोध प्रदर्शन में शामिल लोग फिलिस्तीनियों का समर्थन कर रहे थे।
Hari ini kami hadir di sini bersama teman-teman untuk kepedulian kami terhadap Palestina. Kami ingin
हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं ताकि हम फिलिस्तीनियों के प्रति अपनी चिंता के बारे में बता सकें। हम चाहते हैं कि फिलिस्तीन आज़ाद हो और हम इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हैं कि यरूशलेम को इसराइल की राजधानी बनाया जाए। प्रदर्शनकारी फिरमन मौलाना के शब्द, आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। फिलीपींस के पूर्वी तट पर आए एक शक्तिशाली तूफान के कारण वहां भूस्खलन हुआ है, जिसमें कम से कम 26 लोगों की मौत हो गई है। देश के केंद्रीय द्वीप बिलिरान में 4 शहर तूफान से प्रभावित हुए हैं। बिलिरान से 23 लोग लापता हैं। तूफान के कारण यहां तेज हवाएं चली हैं और पानी घरों के भीतर घुस आया है। इस कारण लगभग 88,000 लोगों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा है। तूफान के कारण यहाँ बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचा है। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने सिडनी में एक व्यक्ति पर आरोप लगाया है कि वो उत्तर कोरिया से मिसाइलों और सैन्य विशेषज्ञता की बिक्री के लिए एक व्यक्ति के लिए दलाली कर रहे थे। इस व्यक्ति की पहचान चान हान चोई के रूप में हुई है, जो दक्षिण कोरिया के मूल निवासी हैं और बीते 3 दशकों से ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं। चान हान चोई पर आरोप है कि उन्होंने वित्त संकट से जूझ रहे उत्तर कोरिया के लिए विदेशी मुद्रा जुटाने के लिए वियतनाम और इंडोनेशिया को कोयले की बिक्री के मामले में मदद की थी। ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों के अनुसार इस बिक्री से उत्तर कोरिया को करोड़ों डॉलर की कमाई हुई होगी। सिडनी में पत्रकारों से बात करते हुए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मालकम टर्नबुल ने कहा कि चान हान चोई पर लगे आरोप बेहद गंभीर हैं।
नॉर्थ कोरिया इज अ डेंजरस reckless criminal regime threatening the peace of the region.
उत्तर कोरिया एक खतरनाक, लापरवाह और आपराधिक सरकार है जो इस इलाके में शांति के लिए खतरा बनता जा रहा है। उन पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध लगे हैं, लेकिन उनका उल्लंघन करके वो अपने लिए मुद्रा जुटा रहा है। वो न केवल कोयला और अन्य चीजें बेचता है, बल्कि हथियार, दवाएं बेचता है और साइबर अपराधों में शामिल होता है। यह महत्वपूर्ण है कि सभी देश संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को कारगर रूप से लागू करने के लिए लगातार काम करें, क्योंकि उत्तर कोरिया पर जितना अधिक आर्थिक दबाव होगा उतना जल्दी उसकी सरकार को नींद से जगाया जा सकेगा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मैलकम टर्नबुल के शब्द, आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। यमन से मिल रही खबरों के अनुसार यहां एक हवाई हमले में शादी में शरीक हुई 10 महिलाओं की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि हमला सऊदी नेतृत्व में गठबंधन सेना ने किया था। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं दिन की दूसरी सभा दिन भर रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव और मैं हूं कुलदीप मिश्र। ये आवाज उस गोलीबारी की थी जो आज पाकिस्तान के एक चर्च पर की गई। पाकिस्तान के क्वेटा शहर में एक चर्च पर हमला हुआ जिसमें कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई है और दर्जनों लोग घायल हुए हैं। चर्च के बाहर पहुंचे एक शख्स का कहना था,
बहुत रिश्तेदार सारे अंदर ही हैं, तो अभी हम लोग वो काम पर थे, काम से इत्तला मिली है कि भाई बम ब्लास्ट हुआ है, तो बस वो बम ब्लास्ट की वजह से अभी हम लोग इधर पहुंचे हैं, लेकिन अंदर नहीं अभी तक छोड़ रहे हैं क्योंकि काफी देर से फायरिंग भी चल रही है इधर।
ये मेथोडिस्ट चर्च उस वक्त श्रद्धालुओं से भरा हुआ था जब दो आत्मघाती हमलावर गोलीबारी करते हुए चर्च की ओर बढ़े। ज्यादा जानकारी के लिए अब से थोड़ी देर पहले मैंने पाकिस्तान के क्वेटा में ही मौजूद हमारे सहयोगी काजिम मंगेल से बात की।
देखिए, ये वाकया क्वेटा शहर में जो जरगून रोड है, ये बड़ा सिक्योरिटी के वाले से अहम इलाका है। यहाँ ये हमला एक गिरजाघर पर कोई 12:10 पर किया गया है। जो ऐनी शाहिदीन है जिनसे हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि पहले उन्होंने शदीद फायरिंग की आवाज सुनी और उसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ। जख्मियों और जो लोग इस वाकये में हलाक हुए थे उनको सिविल अस्पताल लाया गया। सिविल अस्पताल के हुकाम से अभी जो हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि 2 खवातीन समेत 8 लोग जो है ना इसमें हलाक हुए हैं और कोई 56 के करीब जख्मी हैं, जिनमें से 7-8 ऐसे लोग हैं जिनकी हालत तश्वीशनाक है। इसके अलावा जो सिक्योरिटी हुकाम इधर आए तो उनका ये कहना था कि 2 खुदकुश हमलावर थे जो कि चर्च में दाखिल हुए। उनका ये कहना था कि एक जो खुदकुश हमलावर को जो सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकार थे उन्होंने उसको मार दिया था, और दूसरा जो है ना दुआया तकरीब हो रही थी इतवार की मुनासबत से मेन आल में, जो दूसरा उधर तक पहुंच गया था और उसने मेन गेट पे उसको भी मार दिया गया, लेकिन उसने अपने आप को उड़ा दिया। तो उनका ये कहना था कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई थी वो बरवक्त थी, जिसके नतीजे में जो है ना बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। तमाम जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो लोग हैं वो नाराज थे। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने जो है ना इस चर्च के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया और उन्होंने टायर जलाए, और उनका ये कहना था कि ये सिक्योरिटी की नाकामी थी और उन्होंने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की।
जी काजिम, ये बताएं कि क्या अभी तक किसी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली है और सरकार का क्या कहना है अभी इस पर?
देखें, जो BBC को इस हवाले से अभी तक कोई कॉल वगैरह किसी तंजीम की जानिब से अभी तक नहीं की गई है। सरकारी हुकाम का ये कहना है कि ये जो है ना पहले 2-3 खुदकुश हमलावरों का बताया जा रहा था, लेकिन अब जो सिक्योरिटी हुकाम है उनका ये कहना था कि 2 ही खुदकुश हमलावर थे। अब चूंकि एक जो खुदकुश हमलावर है वो उसकी जो है ना बड़ी हद तक जो है उसका चेहरा भी साबित है और शिनाख्त भी होगी, तो उनका ये कहना है कि अब तहकीकात का सिलसिला शुरू किया गया है।
क्वेटा से काजिम मंगेल को सुन रहे थे आप। जब ये हमला हुआ तो क्वेटा के ही रहने वाले अलेक्जेंडर केल्विन अपने बच्चों के साथ वहां मौजूद थे। उन्होंने चर्च के बाहर क्या कुछ देखा, मैंने उनसे पूछा।
मैं सुबह 10:30 घर से इबादत के लिए निकला हूँ, इधर चर्च पहुंचा हूँ तो ये इबादत शुरू थी। ये इबादत का अभी काफी हिस्सा रहता था, अभी अशायर वाणी की इबादत शुरू होने वाली थी, तो बच्चों का इसके बाद क्रिसमस के हवाले से ड्रामा पेश किया जाना था। मेरी बेटी और मेरा बेटा भी इस ड्रामे में शामिल थे। तो मेरा बेटा कहता है आप ऐसा करो पापा, मुझे उधर छोड़ के आओ संडे स्कूल में। मैं बेटे को संडे स्कूल छोड़ के जो चर्च के बिल्कुल साथ है, 10-15 कदम के फासले पर है संडे स्कूल बच्चों का बनाया हुआ, तो वहाँ उसको छोड़ा। तो जैसे ही मैं उसको छोड़ के पीछे हटाऊं तो इधर मेन गेट पर वहाँ पर फायरिंग शुरू हो गई। उन्होंने फिर एक जो सुसाइडर था उसको तो पुलिस वालों ने मार गिराया, दूसरा जो है वो चर्च के मेन दरवाजे तक पहुँच गया। मेन दरवाजे पर पहुँच कर उसने जब देखा दरवाजा बंद है कैसे, उसने दरवाजे पे अपने आप को ब्लास्ट कर दिया। 250-300 के करीब लोग मौजूद थे चर्च में, बच्चे भी थे, औरतें थी, सारे बच्चे बुजुर्ग सब थे।
समय पर अगर वक्त पे वो दरवाजा नहीं बंद होता तो ये एक और बड़ी दुर्घटना हो सकती थी।
अगर बंद नहीं होता सर, वो सुसाइडर के बाहर हैंड ग्रेनेड भी थे उसके पास, और उसके पास अभी मैगजीन भी बचे हुए थे। हैंड ग्रेनेड भी हम लोगों ने फिर बाहर आके देखे, 4 दाने हैंड ग्रेनेड भी उसके पास थे।
ये थे क्वेटा चर्च हमले के प्रत्यक्षदर्शी अलेक्जेंडर केल्विन।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम। बीबीसी हिंदी।
अब बात भारत की, जहां इस वक्त दो प्रदेशों के चुनाव नतीजों का शिद्दत से इंतजार हो रहा है। चुनाव पूर्व की संध्या भी एक उत्सव है। चाय की टपरियों पर आज अनुमान लगाए जा रहे होंगे, गणित बैठाए जा रहे होंगे। हालांकि भाजपा और कांग्रेस दोनों ने जीत के दावे किए हैं। समाचार चैनलों के एग्जिट पोल्स में दोनों प्रदेशों में भाजपा की सरकार बनने का अनुमान जताया गया है। हमारे साथी राजेश जोशी पहुंचे अहमदाबाद में भाजपा और कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर। आप भी सुनिए उन्होंने वहां क्या कुछ देखा।
शाम के करीब 4 बजे हैं और मैं गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति के 4-5 मंजिली इमारत के सामने खड़ा हूं। राजीव गांधी की एक बहुत सुंदर सी मूर्ति यहां लगी हुई है, जिसमें वो हाथ उठाकर अपने समर्थकों का अभिवादन करते हुए दिख रहे हैं। ये बहुत ही सन्नाटा है इस पूरे इलाके में। दुकानें बंद पड़ी हुई हैं, 4-5 गाड़ियां खड़ी हुई हैं, एक यहां पर दुकान खुली हुई है। आपका नाम क्या है?
कन्हू भाई राजपूत। मैं तो ऐसा मानता हूं कि अब बदलना चाहिए, कांग्रेस आनी चाहिए।
आप ये मानते हैं? और आपका क्या नाम है बेन?
भानु।
भानु बेन, ये आप किसको चाहती हैं?
हम कांग्रेस को चाहते हैं।
जितने ये कांग्रेस के दफ्तर के सामने लोग हैं, सब कांग्रेस ही हैं?
हाँ।
तो लेकिन वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के लिए बहुत किया है, नरेंद्र भाई मोदी ने बहुत कुछ किया है।
जो पैसे वाले को उनको जो फाते हैं क्या, बाकी गरीब के आगे तो कोई आता ही नहीं।
ना, लेकिन वोट तो गरीब भी देता है ना, बिना गरीब के वोट के कैसे जीतेगा?
वो जीतते गे पन्नू के इनको मिले तो कल अपने को भी मिल लेंगे, इसके लिए सब वोटिंग करने वाले जी है।
एक मैं देख रहा हूँ कि नर्सिंग वेज सेंटर, ऐसा एक चाट की दुकान है, चाट पकौड़ी। भाई साहब चाट खा रहे हैं आप? आपका क्या नाम है?
मेरा नाम नासिर खान है। हर तबका परेशान है, हिंदू मुसलमान कोई भी जाति का बहुत परेशान हाल है।
इमारत के अंदर मेरी मुलाकात हुई कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष दोषी से। सवाल मेरा ये है कि कितनी बार राहुल गांधी नरोदा पाटिया, बेस्ट बेकरी और उन तमाम मुस्लिम मोहल्लों में गए जहां 2002 में दंगे हुए थे, कितनी बार उन्होंने अपील की कि आपके जख्मों पर मरहम लगाया जाएगा?
निश्चित तौर पे आपको मैं इस विश्वास दिलाता हूं कि कौन सी सरकार ऐसी है जिस सरकार ने अपना जो अपनी फर्ज बनती है कानूनी तौर पे, बंधारणीय पे, कॉन्स्टिट्यूशनल जिसकी फर्ज बनती थी, वो लोगों ने तो सुरक्षा नहीं दी।
मेरा सवाल दूसरा था। नरोदा पाटिया, गुलबर्गा,
आपको इस बात का मैं इसलिए विश्वास दिलाता हूं क्योंकि जब जब इस गुजरात में,
मुझे विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं, मेरा सवाल दूसरा है
आपके माध्यम से,
राहुल गांधी ने क्यों नहीं अपील की, क्यों नहीं गए?
गुजरात में आज क्यों ऐसी घटनाएं बनी, वारदातें क्यों बनी? सरकार की नाकामी रही।
मनीष भाई, आपने मेरे सवाल का बिल्कुल जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर भी समय निकाला, बीबीसी से बात की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सन्नाटा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के सामने भी है। यहां नरेंद्र मोदी, अमित शाह और स्थानीय नेताओं की तस्वीरें लगी हुई हैं। यहां प्रदेश मुख्यालय के पास एक मस्जिद है जहां से अजान की आवाज आप सुन सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय, उसके सामने आप बैठे हैं। आपका नाम क्या है?
अब्दुल्ला खान वाइफ।
अब आप ये बताइए कि कल तो नतीजे आने वाले हैं, आपके जहन में क्या है, क्या हो सकता है?
सबकी हिफाजत के साथ चलाए।
तो भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास।
सबका साथ सब विकास और सुरक्षा दोनों चाहिए।
ये लाल दरवाजा इलाका है जहां बहुत थोड़ा खाता पीता ऐसा इलाका है, यानी यहां थोड़ा बाजार है, दुकान है बहुत चमकदार सी। अच्छा, आप क्या करते हैं?
मैं तो रिटायर हूं भाई साहब।
क्या नाम है आपका?
ओम प्रकाश।
तो ओम प्रकाश जी, कल नतीजे आने वाले हैं चुनाव के, तो आप क्या महसूस करते हैं, क्या होने जा रहा है?
देखिए, दो बातें हैं, एक तो क्या होने जा रहा है और दूसरा क्या होना चाहिए। मैं तो ये सोचता हूं कि कांग्रेस को जीतना चाहिए। अब जीतेगी भाजपा तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। कई बच्चों से मैंने बात की, वो कहते हैं कि हमको, मैं पैदा हुआ था तब से भाजपा का राज देख रहा हूं, अब के मुझे कांग्रेस का राज देख रहा है।
इस बार क्या हुआ कि लोग ऐसा कह रहे हैं कि नहीं, बदलाव चाहिए, अभी नतीजा जो भी आएगा वो आएगा?
1985 में ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस का गढ़ होते हुए गुजरात और भाजपा गई? ऐसा तो बदलाव तो होता ही रहता है ना, रात आती है दिन आता है, तो अब के कांग्रेस आ जाए तो क्या बुरी बात है?
ये बताइए कि यहाँ इतने सारे लोग खड़े हो गए हैं, एक आदमी कोई है जो कहे कि नरेंद्र भाई मोदी ने अच्छा काम किया है?
अच्छा किया
एक मिले हैं जो कह रहे हैं कि अच्छा काम किया। नाम क्या आपका?
मेरा नाम असलम है।
आप कह रहे हैं कि नरेंद्र भाई मोदी ने अच्छा काम किया, जरा बताइएगा क्या क्या हुआ है और क्यों आप समर्थन कर रहे हैं।
सीवन फंड बनाया, फूल बनाए, सब सब कुछ बनाया।
आपका वोट उनको गया?
हाँ उनको गया।
राजेश जोशी की रिपोर्ट सुन रहे थे आप। हिमाचल की बात भी करेंगे लेकिन गुजरात का थोड़ा और जायजा लेते हैं और सीधे चलते हैं अहमदाबाद, जहां हमारे संवाददाता विनीत खरे मौजूद हैं। विनीत, एग्जिट पोल आ गए हैं लेकिन मिठाइयों के इंतजाम तो अभी दोनों पार्टियां कर रही होंगी, और लेकिन अड्डेबाजी के ठिकानों पर और बाजारों में क्या चर्चाएं हैं?
देखिए, एग्जिट पोल आए हैं, राजेश भी गए, बीजेपी दफ्तर में भी गया था, बीजेपी कांग्रेस सबको कल का इंतजार है, उसके पहले सन्नाटा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो मिक्स्ड व्यूज हैं एग्जिट पोल को लेकर। भाई है कि चलो बीजेपी ऐसा लग रहा है आ जाएगी, लेकिन एग्जिट पोल पर सवाल भी आ रहे हैं, उठाए जा रहे हैं। कई लोगों से मेरी बात हुई तो वो एग्जिट पोल पे उनका उनका यकीन नहीं है, वो कह रहे हैं कि मैं कल का इंतजार करेंगे। हार्दिक पटेल ने जो ईवीएम को लेकर सवाल उठाए हैं उसकी भी यहाँ पर चर्चा है कि क्या नतीजे आएंगे, क्या ईवीएम का पर जो आरोप लग रहे हैं ईवीएम को लेकर क्या उस पर असर पड़ेगा। लेकिन बड़ा एंटिसिपेशन सा माहौल है, कोई भी इस वक्त बात नहीं करना चाह रहा है, कोई नेता है या फिर पार्टी का प्रतिनिधि है, सब बिल्कुल कल के इंतजार में है कि कल क्या होगा, उसके बाद से फिर प्रतिक्रिया आनी शुरू होगी।
आपने चूंकि चुनाव से ठीक पहले भी वहां कई दिन बिताए, तो इस चुनाव में कोई एक उल्लेखनीय बात अगर आप साझा करना चाहें जिसने बतौर रिपोर्टर आपको चौंकाया हो या ज्यादा प्रभावित किया हो।
देखिए, दो चीज है, एक चीज तो एज अ रिपोर्टर अगर आप यहाँ आते हैं तो एक जो मुझे महसूस हुआ है कि बीजेपी को लेकर गुस्सा है, बीजेपी को लेकर नाराजगी है, वो जीएसटी को लेकर या फिर जो कैश बैन हुआ है तो उसको लेकर बहुत ही वाइड स्प्रेड नाराजगी है, लोगों में बहुत गुस्सा है, ये बहुत बहुत ही स्टार्क चीज नजर आती है। दूसरा जो मुझे एज अ रिपोर्टर लगा कि जिस तरह से मुसलमानों का कहना है या फिर मुस्लिम्स को लेकर जो नेता है उनका कहना है कि जिस तरह से मुसलमान एक तरीके से सिलेक्शन में इररिलेवेंट हो गए हैं, भाजपा तो वो टिकट देती भी नहीं है, कांग्रेस का भी रवैया ऐसा है कि वो राहुल गांधी का जो जिक्र कर ही रहे थे राजेश जोशी कि कांग्रेस की तरफ से भी ऐसा लग रहा है कि उनके लिए भी मुसलमान रेलिवेंट हो गए, तो मुसलमानों में उसको लेकर बहुत एक सोच है। और अभी मैं प्रोफेसर जेब बंदूकवाला से भी बात कर रहा था तो उनका कहना है कि मुसलमानों को इस बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, उनको एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए, अपने बढ़ावे को लेकर उस पर ध्यान देने की जरूरत है।
बहुत शुक्रिया विनीत खरे, हमसे जुड़े थे सीधे अहमदाबाद से। और अब बात हिमाचल प्रदेश की, जो जाना जाता है हर चुनाव में सरकार बदलने के लिए। पिछली विधानसभा में कांग्रेस सरकार थी और कल यह तय हो जाएगा कि हर बार सरकार बदलने का ट्रेंड हिमाचल बनाकर रखता है या नहीं। वहां का माहौल समझने के लिए अब से थोड़ी देर पहले मैंने स्थानीय पत्रकार अश्विनी शर्मा से बात की।
देखिए, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार पहले की तरह बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही मेन फाइट रही है, जिसमें जो मुख्यमंत्री हैं वीरभद्र सिंह जी 6 दफा पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इस बार कांग्रेस को लीड कर रहे हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को अपना चेहरा बनाया था। इस चुनाव में मुख्य मुद्दे जो थे वो बीजेपी का जिस तरह की स्ट्रेटजी रही है उसके हिसाब से उन्होंने हिमाचल प्रदेश में जो मुद्दा बेसिकली माफिया राज का था और नॉन गवर्नेंस का था कि गवर्नमेंट की अपनी छवि ठीक नहीं थी और मुख्यमंत्री के खिलाफ करप्शन के केसेस थे, बीजेपी ने उन्हीं मुद्दों को लेके और कुछ लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज थे, जैसे आपको याद होगा कि हिमाचल प्रदेश में एक लड़की का बलात्कार हुआ था, उसके बाद उसको मार दिया गया था, बाद में काफी बड़ा एजिटेशन बना, बीजेपी ने उसको भी मुद्दा बनाया था। दूसरी तरफ कांग्रेस जो थी वो अपने मुख्यमंत्री को एक चेहरा बना के कि इन मुख्यमंत्री ने पिछले 5 सालों में बहुत विकास किया है, कांग्रेस ने केंद्र की सरकार के नॉन परफॉर्मेंस डीमोनेटाइजेशन जीएसटी को भी मुद्दा बनाया।
जो आज की तारीख में अगर बात करें, कल तो नतीजे आ ही जाएंगे, तो क्या ये चुनाव आपको कवर करते हुए उतने एक तरफा लगे जैसा एग्जिट पोल में अनुमान जताया गया है?
देखिए, ये चुनाव एक तरफा तो बिल्कुल नहीं थे क्योंकि कांग्रेस ने अपनी पूरी शक्ति झोंकी है, मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी जो काफी बड़े नेता है हिमाचल प्रदेश के, उनका अपना एक मास बेस है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह की एक परिवर्तन की प्रथा हिमाचल प्रदेश में चल रही है कि हर 5 सालों में एक सत्ता परिवर्तन होता है, मुझे लग रहा है कि वो भी एक बड़ा फैक्टर बन के उभरा है।
क्या हिमाचल प्रदेश के वोटर 5 सालों में अपनी पसंदीदा पार्टी से उनका मोहभंग इतनी जल्दी क्या हो जाता है, अगर आप संक्षेप में बता सकें? मुझे पता है कि ये एक लंबा विषय है बातचीत करने के लिए, लेकिन फिर भी
देखिए, हिमाचल प्रदेश में जो पब्लिक की सत्ता के साथ संबंध है वो बहुत नजदीक है, क्योंकि छोटी स्टेट है, यहाँ हर समय मुख्यमंत्री के पास लोग पहुंच जाते हैं, मुख्यमंत्री खुद लोगों के बीच जाता है, गांव में जाता है, कॉन्स्टिट्यूंसी में जाता है। तो मुझे लगता है कि हर 5 सालों के बाद उनका ये लगता है कि दूसरी जो सरकार आएगी उससे हमें और ज्यादा मिलेगा। ये नहीं है कि एक सरकार बिल्कुल फेल हो गई, उन्होंने कुछ नहीं किया, हर सरकार ने काम किया हिमाचल प्रदेश में, बट लोगों की उम्मीद उससे भी ज्यादा है।
हिमाचल प्रदेश से अश्विनी शर्मा को सुन रहे थे आप।
जरा अपने घरेमान में देखो क्या हाल हो गया है आपका। मैं आज फिर चुनौती देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी चुनौती देती, आओ विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ो।
इस बार बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी चुनाव दबा के लड़ रही है, मिलकर लड़ रही है, एक साथ लड़ रही है, स्ट्रेटेजी के साथ लड़ रही है। चुनाव नैरेटिव पे जीता जाता है।
गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव, किसका दावा सही निकला, कौन गलत साबित हुआ, जानने के लिए सोमवार 18 दिसंबर को सुनिए बीबीसी हिंदी का विशेष प्रसारण सीधे गुजरात से, रेडियो, ऑनलाइन और फेसबुक पर पूरे 1 घंटे, शाम 7:30 से 8:30 बजे तक। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि शाम 8 से 8:30 बजे तक ये अतिरिक्त कार्यक्रम आप सुन पाएंगे शॉर्ट वेव 9540 किलोहर्ट्ज़, 5875 किलोहर्ट्ज़, 11945 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। 75 वर्षों से आपके साथ बीबीसी हिंदी रेडियो।
सुनिएगा जरूर कल चुनाव नतीजों पर अहमदाबाद से हमारा खास कार्यक्रम। और अब बात कांग्रेस की सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहीं सोनिया गांधी की। अब उनके पुत्र राहुल गांधी ने पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल ली है और सोनिया ने अपनी भूमिका से रिटायर होने का ऐलान कर दिया है। लेकिन यह संन्यास सिर्फ अध्यक्ष पद की भूमिका का है, क्योंकि उनकी बेटी प्रियंका गांधी ने साफ कर दिया है कि रायबरेली से उनकी मां ही चुनाव लड़ेंगी। निकट भविष्य में सोनिया गांधी की राजनीतिक भूमिका पर उठी सुगबुगाहटों पर लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट।
सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष पद से अभी 2 दिन पहले ही रिटायर हुई हैं, लेकिन उनके अगला लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर आशंकाएं पहले से ही जताई जा रही थीं। खुद सोनिया गांधी की इस घोषणा के बाद कि अब वो रिटायर हो रही हैं, इन आशंकाओं को और बल मिलने लगा। इन्हीं आशंकाओं के बीच प्रियंका गांधी के राजनीति में उतरने और सोनिया गांधी की संसदीय सीट रायबरेली से चुनाव लड़ने को लेकर कयास लगने शुरू हो गए। लेकिन NDTV चैनल से बातचीत में प्रियंका गांधी ने छोटे से जवाब में दोनों आशंकाओं पर विराम लगा दिया। प्रियंका गांधी ने साफ कर दिया कि रायबरेली सीट से उनकी मां यानी सोनिया गांधी चुनाव लड़ेंगी। वैसे इस बात को कांग्रेस पार्टी भी साफ कर चुकी है कि सोनिया गांधी सिर्फ अध्यक्ष पद से रिटायर हुई हैं, राजनीति से नहीं। लेकिन जानकारों का कहना है कि यदि ऐसे कयास लग रहे हैं तो ये पूरी तरह से निराधार भी नहीं है। लखनऊ में वरिष्ठ पत्रकार योगेश मिश्र कहते हैं,
देखो ऐसा है कि सोनिया जी अस्वस्थ है और अस्वस्थ होने की वजह से वो चुनाव लड़ पाएंगे थोड़ा मुश्किल है, और ये इनकी पारंपरिक सीट है। अगर राहुल जी आते हैं रायबरेली तो अमेठी में कोई न कोई इनके घर का आदमी उतरेगा, और अगर नहीं आते हैं तो रायबरेली में कोई न कोई घर का आदमी उतरेगा। प्रियंका गांधी पॉलिटिक्स में तो आएंगी जाएंगी, और मुझे लगता है कि इस सीट पर प्रियंका गांधी को ऐसा उम्मीदवार दिखता नहीं जिसको उतार दे, इनका खास कोई इस समय दिख नहीं रहा, क्योंकि लंबे समय तक सत्ता नहीं रहने के नाते बहुत से खास लोग साथ छोड़ जाते हैं।
रायबरेली से प्रियंका गांधी का नाता वैसे ही रहा है जैसे कि सोनिया गांधी का या फिर उनके परिवार के दूसरे सदस्यों का। रायबरेली के लोग एक तरह से सोनिया गांधी का प्रतिनिधि उन्हीं को मानते हैं और उन्हीं को अपना सांसद समझते हैं।
प्रियंका गांधी अपने भाई के साथ में खड़ रहती हैं, कहीं अगर भाई लड़ेगा तो वो लड़ेंगी तो फिर ये तो दोनों वो हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। कि नेता है जरूर कह के, लेकिन वो भाई के ही साथ में रहना चाहती हैं, अपने भाई का सर नीचा नहीं करना चाहती है।
उनका गढ़ है ये तो भाई, यहाँ से जो लीड लेती हैं वो यूपी के लिए, और ये अपने गढ़ में नहीं आएंगी। तो
प्रियंका गांधी राहुल गांधी का वर्चस्व है, उनके पिता राजीव गांधी जी और यहाँ पे सोनिया गांधी जी का ये संसदीय क्षेत्र है और उनकी दादी इंदिरा गांधी जी की कर्मभूमि रही है, तो कांग्रेस का ये गढ़ है, यहाँ से अमेठी और रायबरेली में उनका बहुत वर्चस्व है, बहुत प्रियंका जी बहुत लोकप्रिय है।
साल 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने सिर्फ अमेठी और रायबरेली में ही जीत हासिल की थी, लेकिन 2019 में वो नई रणनीति के साथ मैदान में उतरना चाहती है। ऐसे में गांधी परिवार के युवा नेताओं को चुनावी मैदान में उतारना भी शामिल है। कयास ये भी लग रहे हैं कि इस समय सुल्तानपुर से बीजेपी के सांसद वरुण गांधी भी आने वाले दिनों में कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं और इन तीनों नेताओं को गांधी परिवार की परंपरागत सीटों पर उतारा जा सकता है और दूसरी सीटों पर इस रणनीति का भावनात्मक फायदा उठाया जा सकता है। बहरहाल अभी ये सब अनुमान ही है, वास्तव में क्या होगा इसका पता आने वाले दिनों में ही चलेगा। समीर आत्मज मिश्र, बीबीसी लखनऊ।
और अब वक्त है खेल समाचारों का। तो खेल की दुनिया के समाचारों का हाल सुनाने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं आदेश कुमार गुप्त जी। आदेश जी बताएं आज क्या खबर है।
जी देखिए कुलदीप, आज दो बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबले थे। एक तो श्रीलंका के खिलाफ विशाखापत्तनम में खेला गया तीसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच, जहाँ श्रीलंका के पास एक अवसर होता कि वो भारत में पहली बार कोई एक दिवसीय सीरीज जीती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और थोड़ी ही देर पहले 32.1 ओवर में भारत ने जीत के लिए 216 रनों का लक्ष्य केवल 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। और सबसे बड़ी बात ये रही कि शिखर धवन ने केवल 84 गेंदों पर 100 रन बनाए, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी तेज़ उन्होंने बल्लेबाजी की। और दूसरी तरफ आज भारत की पीवी सिंधु के पास मौका था कि वो बैडमिंटन में एक जो बड़ा खिताब माना जाता है साल का आखिरी टूर्नामेंट वर्ल्ड सुपर सीरीज़ फाइनल्स, लेकिन वो जापानी खिलाड़ी से मात खा गई। उस पर हम चर्चा थोड़ी देर में करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर
सीरीज का जो एक तरीके से फाइनल मुकाबला कहा जा रहा था, पहला मैच हारने के बाद जो प्रतिष्ठा एक किस्म से भारतीय टीम की दांव पर लग गई थी वो आज हमने बचा ली।
जी देखिए, दूसरे मैच में जिस तरह से कप्तान रोहित शर्मा ने दोहरा शतक जमाया था अपने टेस्ट करियर का तीसरा, और बहुत आसानी से भारत जीता था बहुत बड़े अंतर से लगभग 150 रन के, तो आज भारत ने जिस तरह से 8 विकेट से जीत हासिल की है वो भी काफ़ी बड़ी जीत है। हालांकि एक समय जब टॉस हारकर भारत ने फील्डिंग करने का फैसला किया तो उपुल थरंगा ने जिस तरह से 95 रन बनाए, सदीरा समर विक्रम ने 42 रन बनाए और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 121 रनों की साझेदारी हुई, तब ऐसा लगा था कि शायद श्रीलंकाई टीम आज भारत के सामने कम से कम 300 रनों का लक्ष्य जरूर रखेगी। लेकिन उसके बाद युजवेंद्र चहल ने जिस तरह से 46 रन देकर 3 विकेट लिए, कुलदीप यादव ने 42 रन देकर 3 विकेट लिए, हार्दिक पांड्या ने 49 रन देकर 2 विकेट लिए, तो उसकी वजह से जो श्रीलंकाई टीम है वो 44.5 ओवर में ही केवल 215 रन पर ऑल आउट हो गई। और इस तरह से जो भारत है उसके सामने जीत के लिए 216 रनों का लक्ष्य था। और आज भारत के कप्तान रोहित शर्मा हालांकि केवल 7 रन बना सके, लेकिन श्रेयस अय्यर ने 65 रनों का योगदान दिया। और उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि शिखर धवन ने 84 गेंदों पर 100 रन बनाए, जिसकी वजह से भारत ने आसानी से ये जीत हासिल की और सीरीज़ भी 2-1 से अपने नाम कर ली। और अगर बैडमिंटन की बात की जाए तो भारत की पीवी सिद्धू दुबई में समाप्त हुए वर्ल्ड सुपर सीरीज़ फाइनल्स के फाइनल में आज जापान की अकाने यामागुची से 1 घंटे 34 मिनट तक चले कड़े संघर्ष के बाद 21-15, 12-21, 19-21 से हार गई। लेकिन इसके बावजूद पीवी सिद्धू ने इस साल बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया, उन्होंने सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीता, कोरिया ओपन जीता, इंडियन ओपन जीता, और इसके अलावा पीवी सिंधु विश्व चैंपियनशिप और हांगकॉन्ग ओपन के फाइनल में भी पहुंची, लेकिन वो खिताबी जीत वहां हासिल नहीं कर सकी। टूर्नामेंट
में उन्होंने रजत पदक हासिल किया।
जी हाँ, और पहला गेम उन्होंने बहुत आसानी से जीता था, लेकिन उसके बाद ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं स्टैमिना की कमी उनकी जीत के आड़े आई।
बहुत शुक्रिया आदेश कुमार गुप्त, खेल समाचार बता रहे थे। कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर सुनिए मानसी दास से।
बीबीसी समाचार। अभी मिल रही खबरों के अनुसार तुर्की के राष्ट्रपति रिचप तैयप अर्दवान ने कहा है कि वो पूर्वी यरूशलम में अपना दूतावास खोलना चाहते हैं। वो अमेरिका के यरूशलम को इसराइल की राजधानी के रूप में मान्यता देने और तेल अवीव से अपना दूतावास हटाकर उसे यरूशलम ले जाने के फैसले का विरोध करते रहे हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मेथोडिस्ट चर्च पर हुए एक हमले में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई है और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में करीब 80,000 लोगों ने अमेरिका के यरूशलम को इसराइल की राजधानी के रूप में मान्यता देने के फैसले के विरोध में जुलूस निकाला है। फिलीपींस के पूर्वी तट पर आए एक शक्तिशाली तूफान के कारण वहां भूस्खलन हुआ है, जिसमें कम से कम 26 लोगों की मौत हो गई है। देश के केंद्रीय द्वीप बिलिरान में 23 लोग अभी भी लापता हैं। यमन से मिल रही खबरों के अनुसार वहां एक हवाई हमले में शादी में शरीक हुई 10 महिलाओं की मौत हो गई है। अल्जीरिया में एक फुटबॉल मैच के दौरान हुई हिंसक झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य घायल हो गए हैं। बीबीसी समाचार।
तो इसी के साथ दिन भर की ये सभा अब यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात कल सुबह नमस्कार भारत में होगी। कल शाम 7:30 बजे अहमदाबाद से चुनावी नतीजों पर हमारा खास कार्यक्रम जरूर सुनिएगा। इस कार्यक्रम को आप तक पहुँचाया राजेश चौहान ने। कुलदीप मिश्र को दीजिए इजाजत। नमस्कार।